पुरजाया कि परमात्मा प्राप्ति हो चुकी है, इसका ज्ञान साधु को किस समय कैसे होता है, इसको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है इस बात का ज्ञान साधु को कब होता है, कैसे होता है, इस ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान कर नहीं सकते हम, हमारे से अधिक पढ़े हुए की परीक्षा हम नहीं कर सकते। हम परीक्षा करते हैं हमारे से कम पढ़े हुए की। एक बात याद आ गई, बढ़ने से सत्संग होता था, कई वर्षों की बात है, बड़ी चले जाए। उस समय एक आदमी आया मेरे पास एकांत में बात करने के लिए। उसने पूछा कि आप इतने वर्षों से सत्संग कराते हैं, यहाँ आते हैं, कोई अच्छा महात्मा बताइए जिसका हम संग करें, ऐसे अच्छे महात्मा बताइए। मैंने कहा मुझे आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई। फिर कहा उसने कि अच्छे महात्मा हो तो आप बताओ, उनका हम संग करें, सत्संग करें। तो मैंने ये उत्तर दिया, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई, अकल में नहीं ऐसी बात किया, उत्तर क्या दे, समझ में आवा तो उत्तर दूंगा। फिर अक्सर आपके समझ में आ गए, आज पूछने वो समझ में आ गए, परंतु आपके पूछने का भाव मेरे समझ में अकल में बैठा नहीं। मेरे बताए हुए महात्मा को आप महात्मा मानोगे, फिर संग करके लाभ उठाओगे, तो परीक्षा करने वाला मैं पहले बैठा जाऊं क्यों? मेरे परीक्षा में कुछ तत्व है तब तो मेरी परीक्षा सच्ची है, तो उठ क्यों जाओ, मैं बैठा ही हूँ। अरे झूठी है तो फिर क्यों पूछू, मेरे को समझ में नहीं आई, मेरा ये प्रश्न समझ में नहीं आया। अच्छा महात्मा बताओ तो मैं दर्शन करूँ, हमारा महात्मा अच्छा बताओ तो अच्छा मन लगे परीक्षा मैं करूँगा, तो मैं उनसे छोटा हुआ बड़ा हुआ, अरे वो मिल गया फिर उससे क्यों कर सकता हूँ, आखिर आप समझिए। तो इस वजह से महात्मा की परीक्षा के परमात्मा प्राप्त हो चुके हैं कि नहीं, इस बात की परीक्षा हम नहीं कर सकते। अगर मामूली पढ़े हुए भी ज्यादा पढ़ा हुआ परीक्षा कर सकता है, अब थोड़ा पढ़ा हुआ अधिक पढ़े की परीक्षा कैसे करे, वो इतनी परीक्षा करे कि मेरे को पढ़ा सकते हैं, इतनी परीक्षा होती है। मैं कोई बात पूछूं तो ये बता देंगे, इतनी परीक्षा होती है। मैं पूछी वो नहीं बता देगा, अभी परीक्षा होगी, मैं पूछने लगी बात को बता सके तो क्या बता सके, ये बात है। तो परीक्षा यही है उसकी कि जिसके संग से हमारा अज्ञान दूर होता है, हृदय की गांठें खुलती है, अंधेरा दूर होता है हमारा, तो हमारे लिए वो महात्मा है बहुत प्राप्त। अब कहाँ तक है इसका पता नहीं, पर हमारे लिए संग करने का अवसर है, उनका संग करो, उनकी बातें सुनो, वहां लाभ होगा। और जल कैसा है, प्यास मिटती है, अन्न कैसा है, भूख मिटती है, वो है। ऐसे जिसके संग से अपनी गहरी गहरी हृदय की शंकाओं का समाधान होता है और नया नया प्रकाश मिलता है जिसके वचनों से और जिसके संग से पास में रहने से, तो हमारे लिए वो संग करने लायक है। दूसरी बात है कि वो हमारे से कुछ चाहते हैं क्या, हमारी चाहते वो हमारे क्या निहाल करेंगे, वो हमारे को निहाल करने वाले नहीं। कहते हम गुरु बनावे तो भेंट करनी पड़ती है, तो भेंट के भूखे गुरु हो जाएंगे। वे है तुम्हारे पोता चेला, क्या तुम्हारा, तुम रुपयों के मालिक, वो रुपयों का दास, तो तुम्हारा पोता हुआ ना। तुम्हारे को निहाल कैसे करेगा, तुम्हारे से निहाल वही कर सकता है करे तो, कि तुम्हारे से किसी तरह की गर्ज नहीं है, रुपये पैसे की, मान बढ़ाई की, आदर सत्कार की, रोटी कपड़ा की, कोई तुम्हारे से आशा इसके नहीं है। अब वे भगवत प्राप्त है कि न है, अधूरा है, पूरा ही हो गया मतलब। और तुम्हारी दृष्टि में तीसरी बात, तुम्हारी दृष्टि में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, रह योग, अर्थ योग, राज योग, मंत्र योग, अनासक्ति योग, कई तरह के योग है। तुम्हारी दृष्टि में जितने तुम्हारे को अच्छे अच्छे पंडित मिले हैं, साधु मिले हैं, जानकार मिले हैं, उनसे अधिक जानकार तुम्हारी दृष्टि में दीजिए कि ज्ञान योग, भक्ति योग, इसी विषय में बड़े गहरे जानकार है, जितने मिले उनसे ज्यादा जानकार है, उनका संग करो। अब वो कहां तक पहुंचे हुए तुम्हें क्या मतलब है, उनसे अपने लाभ लेना है तो उनसे लाभ लो। तो ऐसे अपनी परीक्षा करो, उनकी परीक्षा मत करो, उनकी परीक्षा नहीं कर सकते आप। अपने विचार करो, हमारे देवी संपत्ति आती है, आदर संपत्ति मिलती है, हमारा भी लोभ मिटता है, हमारी शंकाओं का समाधान होता है, गहरी गहरी बातें जिनको हम नहीं समझते, ऐसी बातों को आप ही जिसके संग करने से, भजन सुनने से ज्ञान होता है, प्रकाश मिलता है, तुम आज संग करो। एक बात और कहता हूँ कि गुरु शिष्य का संबंध मत जोड़ो, उनको गुरु बनाओ और शिष्य बनो ये संबंध मत जोड़ो। गुरु से तो कहते चेला हो तो बताऊंगा, मैं कहता हूँ चेला मत बनो, चेला बनने से बन जाता है और घर से जीता रह जाता है, और अच्छी कोई महात्मा मिलते उससे जीत मिल जाता, वही बन जाएगा दिन बस। अब उसे बड़ा कैसे जाएगा, वो गुरु को तो छोड़ेगा नहीं, गुरु उसको छोड़ेगा नहीं, तो बदल लग जाएगी। इस बात से समझ, गुरु से ज्यादा आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो और सत्संग करो, पर गुरु शिष्य का संबंध मत जोड़ो, संबंध जोड़ने फंस जाओगे वहां। संबंध तो संसार का भी नहीं छूटा है, तो नया क्यों करो, फिर फंसोगे। क्या संसार के संबंध कम है, घने ही संबंध है, फिर नया संबंध कर क्यों फंसो भाई। ये बात है महाराज, हम कैसे परीक्षा करें बोलो, अरे कब करें, कब कब तो तुम्हें तो जब जरूरत हो तब कर लेना, और कैसे कर लेना तो अपनी परीक्षा से परीक्षा कर लेना, उनकी परीक्षा हम नहीं कर सकते, हमारे से ऊंचे उनकी परीक्षा हम कैसे करें। परीक्षा करने के हमारे में सामर्थ्य नहीं है, अपनी ये बात है कि हमारा समाधान होता है, हमारे को संतोष होता है, जिनके दर्शन करने से, स्पर्श से, भाषण से, चिंतन से हमारा लाभ होता है, हमारी शंकाएं मिटती है, हमारे हृदय का अंधकार दूर होता है, प्रकाश मिलता है, तो उनका संग। इसका उत्तर ये संदेश ये है भाई, फिर देखो, फिर खोज करो, ये मेरे से पूछा और उसको खोज करो, इसमें कोई बाधा की बात नहीं। अब कहते हैं मन बस में होता नहीं, ये आपने कहा कि बहुत वर्षों से भी मन बस में नहीं होगा, होता नहीं, तो मन में बस को करने लगा क्या, गया संकल्प नया संकल्प और उठ जाता है तो मन को बस मत करना चाहे तो कैसे करे। मैंने कहा मन को संकल्प करोगे एक नया संकल्प और पैदा हो जाएगा, उपाय करोगे उसका संकल्प और हो जाएगा, संकल्प बढ़ जाएंगे, जल्दी मन बस में नहीं होगा। तो फिर साधक क्या करे कैसे बस में करे ये प्रश्न आया। इसमें उत्तर एक बताऊं, जहां कहीं लोग कहते हैं मन लगे कैसे है, मन बसे बस में हो कैसे, इसके पीछे मत पड़ो बाबा। तुम्हारा मन में जो कुवासनाएं हैं, संसारी तरफ आकर्षण है, ये कैसे मिटे? ये जितना मिटेगा उतना बस में आप साफ हो जाएगा, और बस में न हो तो हानि नहीं है। परंतु संसार में राग रहा तो समाधि लग जाए तो भी कल्याण नहीं होगा, एकाग्र हो गया मन को समाधि लग गई तो कल्याण नहीं होगा। पर इस तरफ लोगों में वृत्ति नहीं है, लोग समझते हैं मन एकाग्र हो जाए मन लग जाए। मन का लगना इतना दाम ही नहीं है जितना संसार के भोगों से संग्रह से हटता है उसमें लाभ है। संग्रह करने से और भोग भोगने से मन अगर हटता है तो जो लाभ होगा वो भस्म करने से नहीं होगा। एक बहुरूपिया था, कथा सुनी हुई है, तो वो समाधि लगाना ध्यान देता, श्वास को रोक लेता 6 महीना 12 महीने तक, कुछ खाना पीना नहीं, बैठा चुपचाप, ऐसी विद्या सीख ली। तो वहां गांव के ठाकुर थे, उनके सामने कहा कि मैं ऐसे बैठ जाऊं और मेरे ऊपर मकान चढ़ा दो, एक छतरी बना दो, चढ़ा दो सब चारों तरफ से बंद कर दो, उसमें बैठा रहूं, आप जब चाहो तब खोल लेना, जग जाऊंगा फिर। तो ऐसे बैठा दिया उसको, ऊपर मकान बना दिया। वो ठाकुर मर गए, छोरा ठाकुर मर गए, 2-3 पीढ़ी हो गई, और वहां रेता आता आता रेता हो गया साहब, सब जगह समान खेत हो गया। वो किसी के खेत लिया कि महाराज हमारे खेती करना है, दिया गया, उसने हल चलाया तो वहां हल अटक गया, जिनसे मकान था। उस मकान को खोला तो उसके धक्का लगा तो वो खुल गया, माँ को समाधि खुल गई। कुछ बोला बोलो राव ठाकर घोड़ा ना हो मान तुम्हारे घोड़ा देंगे, तो घोड़े को लेकर समाधि लगाई तो खुलते हैं घोड़े की इच्छा हुई। तो ये चाहना खराब है, जाना खास, एक तो रुपया संग्रह हो जाए, एक हम भोग भोग है। और मान है बढ़ाई है प्रशंसा है, कई तरह की इच्छा है, ये इच्छाएं जितनी मन की कटेगी उतना लाभ होगा। अभी जो किसी में राग होता है किसी में द्वेष होता है ये है दोष, चंचलता इतना दोष नहीं है बड़ा, मन की जो चंचलता है ये मिट जाए ये बड़ा दोष नहीं है। कोई अच्छा लगता है और कोई बुरा लगता है, अच्छा लगता है वो तो रहे, बुरा लगता है वो यहाँ से रवाना हो जाए। अच्छी चीज लगती है वो मिलती रहे, बुरानी परिस्थिति खराब है वो खराब मिट जाए, अच्छी परिस्थिति आ जाए, ये जो मन की भावना है ना ये घातक है तुम्हारे। राग है ना, आसक्ति है, प्रियता है संसार में, संसार में प्रियता है, ये घातक है। वो न रहे तो चंचल रहो कोई हद नहीं है। सांप के विष को दूर कर दे तो सांप गर्म पड़ा क्या, जहर में जहर तो दांतों में विष है वो काट जाए तो मर जाए आदमी। इस तरह से इन मन रूपी सांप के मन में जो कामना है चाहना है भोगों की और ऐश्वर्य की इच्छा है, मान बढ़ाई आराम की इच्छा है मन में, भोग इच्छा है, संग्रह करने की इच्छा है, मेरे पास संग्रह हो जाए, महान घातक है चीज। इनसे नुकसान के सिवाय फायदा कुछ होने का नहीं है। मन में वासना रह जाएगी ना तो अजगर देह धरा से सांप बढ़ेगा। कल्याण नहीं होगा। इसमें जो महत्ता है मन की भोगों में और संग्रह करने में, रुपयों में, पदार्थों में और व्यक्तियों में, ये ठीक है, ये बेठीक है, ये आदमी यहाँ से निकल जाए, ये आ जाए, परिस्थिति ये बदल जाए, ये परिस्थिति खराब है, परिस्थिति अच्छी हो जाए, ये कभी होने का है नहीं। और जाए बिले राखे राम, ताए बिले रहिए, कि सीताराम सीताराम सीताराम, कल्याण हो जाए। जैसी परिस्थिति बने राम जी के, जाए बिले राखे राम, ताए बिले रहिए, वैसे ही मौत निहाल हो जाओ, इसमें संदेह नहीं। तो एकाग्र करने की अपेक्षा मन को शुद्ध करना है, बढ़िया है। शुद्ध करना है कि राग द्वेष अंतःकरण में रहे, न किसी व्यक्ति में राग रहे, न किसी व्यक्ति से द्वेष रहे, न किसी परिस्थिति में राग रहे, न कभी कभी किसी परिस्थिति में द्वेष रहे। अगर ये दो मिटा दिए, गीता ने कहा इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थित हो, कई और न बस मत से तो हस्त परिपंथे रहो, इनके बस में मत है, वो तुम्हारे शत्रु हैं, मार्ग में महान लूटे रहे परिपंथ, तुम्हारे मार्ग है वो ठीक चलने नहीं देंगे, इन दोषों को दूर कर दो, राग द्वेष मिटाओ। द्वेष इसके साथ ये जगत निकल जाए यहाँ से, ये ठीक हो जाए, ऐसे निकल जाए दूसरा आ जाएगा। मैंने एक बात बताई थी, दो बार कही तो याद है, कई बार कह दी तो पता नहीं है, मैं दो बार से कम नहीं कही है मैंने। आपके मन में जो ये नहर है तो फायदा होगा, ये क्या है, ये राग है, द्वेष है, द्वेष। और ऐसी परिस्थिति में ये आदमी हमारे पास है, ये है राग। तो राग पूर्व ग्रहण करना, द्वेष पूर्व त्याग करना, ये ग्रहण करना राग त्याग करना कुछ अर्थ नहीं रखता, किसी कुछ लाभ होने वाला नहीं होगा, ना ग्रहण से लाभ होगा ना त्याग से लाभ होगा। क्योंकि राग और द्वेष खास मुख्य, उनको तो आपने आदर दिया, द्वेष भले ही रहे, ये आदमी यहाँ न रहे तो आदमी इतना दोषी नहीं सकता, द्वेष दोषी है। और ये आदमी यहाँ रहे, राग जितना दोषी है ना उतना उसका रहना दोष नहीं है। तो ग्रहण और त्याग, राग पूर्व ग्रहण न हो और द्वेष पूर्व त्याग न हो, फर्सी हो जाएगा। तो राग द्वेष हुए बाद तो ऐसे परिपंथ न हो, ये जीवन में अपना सुधार करे कि राग द्वेष नहीं हुए, दोनों के बस में न हो। बहुत वर्षों की बात है, कलकत्ते रहता था 8 वर्ष महीना, उन दिनों घूमने गया तो मन में आया कि राग द्वेष हो गया, तो बड़ा कठिन काम है, तो राग द्वेष सर्वथा मिट जाए, ये तो कठिन काम है। अगर तो तैयार ना बस में आ गए, पर अब ठीक है, बस में न होना ये तो हाथ की बात है। राग पूर्व ग्रहण, द्वेष पूर्व त्याग, ये बस में हो गए। राग वो चीज ग्रहण करी, द्वेष इस चीज का मनुष्य का त्याग कर दिया, बस मन विच्छेद कर दिया, तो ये ग्रहण और त्याग कल्याण करने वाला नहीं है। तैयार ना बस में आ गए, इससे हमें संतोष हुआ, ये बात उपाय चाहिए, बसीभूत न हो। कोई काम करे तो इसके बसीभूत हो न करे, उनसे संबंध विच्छेद कर दो, ठीक हो जाएगा, नहीं हो। आपका द्वेष रख लिया, खास द्वेषी चीज है वस्तु रख ली, वस्तु चालू हो गई, भक्ति चालू हो गई, क्या बात है। अच्छी वहां पर जहर जहर और अच्छी पतन करने वाली चीज को पकड़ ली, द्वेष को तो रख लिया मन में, संबंध विच्छेद कर दिया, उसको अलग कर दिया, कोई फायदा नहीं, दोष बहुत बड़ा हुआ। ऐसे राग पूर्व ग्रहण में और द्वेष पूर्व त्याग में कल्याण नहीं होता, उद्धार नहीं होता। और परिस्थिति बदलने की अपेक्षा परिस्थिति का सदुपयोग करना ये दामी है, बदल नहीं सकते आप, दूसरी और परिस्थिति आ जाएगी तो उसमें और दुख है, इसमें नया दुख और होगा, जिसका अभी पता ही नहीं आपको। हम निर्धन है, धनवान हो जाए तो बड़ा सुख हो जाए, धन हो जाए तो इतना दुख होगा जो और दुख है ही नहीं, पता ही नहीं आपको कि धन में कितना दुख है, धन होने से कितनी आफत है, ये आपको पता नहीं, धन होने से पता लगेगा। अब आज का जो रखें कहाँ, इसका करें क्या। सर जी कहते थे कई लोग आते हैं कहते हमारे पास पैसा पड़ा है, दो में सोना है, अब क्या करें, कहाँ रखें। तो कहते थे मैं कहूँ वो बात तो मानेंगे नहीं, विश्वास उनको उपाय बताने मानेंगे। तो बढ़िया उपाय है कि दान पुण्य करो, जिनके अभाव है उनको दे करके खत्म करो, तो बड़े भारी खजाने में जमा हो जाएगा तुम्हारा। लेना ही भी चाहो तो एक गुना दान सहस गुना पुण्य तुम्हारा खजाना हो जाएगा। मरने के बाद जहाँ जाओगे वहां तुम्हारा खजाना खुल जाएगा। ये है रक्षा का उपाय। मैं ये तो होता नहीं जिसमें धनी आदमी से खर्च होना बड़ा कठिन है। ये मैंने देखा प्राय करके ऐसा है, जिनके पास अधिक धन है वो खर्च नहीं कर सकते। गरीब घर खर्च करे, गरीब खर्च कर सकते हैं और धनी आदमी कर नहीं सकता। उसको नहीं तो 1000 2000 10000 रुपए दिन इतना खर्च कर दिया तो कुछ नहीं हुआ है। कितना 1,00,000 रुपयों में से 1,000 खर्च किया तो 99,00,000 पड़ा है। और जिस पास पास 5 रुपये है 2-3 रुपया वो खर्च कर देता है, कायम और काम है 2 रुपया मेरा दे। तो 1,00,000 में कितना खर्च करे तब 2 रुपये में समान होगा बताओ। 20,000 एक साथ खर्च कर दे, 5 में 2 कर दे तो 100 में 20 करे। जी 40 करे। अरे करोड़पति हो तो 40,00,000 एक साथ खर्च कर देगा। अरे 5 में 2 खर्च करने से विजय तंगी आ जाएगी। वो 40,00,000 खर्च कर रहे करोड़पति के तो तंगी आएगी, तो 2 के समान नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। तो गरीब जितना कर सकता है उतना धनी आदमी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, ताकत नहीं उसमें। 40,00,000 राम राम राम। तो धनी आदमी मन में आती है लोगों के कि मेरे पास धन हो तो मैं भी खर्च करूं। बिल्कुल गलत है ये बात। है जिसमें खर्च करो, है इस अवस्था में आप करो, बड़ा बढ़िया होगा और सुगम होगा। ज्यादा धन हो जाए तो फिर ज्यादा पुण्य करेंगे, पुण्य ज्यादा नहीं होगा उसका। पुण्य तो सत्य सारू दत्त बांट ये ना पो कहते तो मेरा शक्ति के अनुसार करने में पुण्य होगा। 5 रुपयों वाला 2 रुपया खर्च कर दे करोड़पति 40 करे तो उतना नहीं होगा। इस बार से धन हमारे पास कर्ज क्या करें, हम तो पुण्य थोड़ा कर सकते हैं। माल पर जगात लगती है, इनकम पर टैक्स होता है, इनकम भी नहीं टैक्स किस बात का, तो तुम्हारा इतना होगा नहीं भाई। इस बार से जितना ज्यादा धन की इच्छा करना, धर्मार्थम यस्य वित्तीय, जिसकी इच्छा है कि धर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, ज्यादा होते ज्यादा करेंगे, वरुण तस्वीर था उसकी चेष्टा मत करो। काजा लगा लो फिर धो लेंगे तो लगे से ही हो साफ है बात। सोचते नहीं इनको लगा दे, हमारे घर में खल चलती है पानी की, उनसे साफ कर लेंगे। गलती है, जहां घना हो तो दान पुण्य ज्यादा करेंगे। काजा से जितना कपड़ा खराब होगा उतने पानी से कादा साफ हो जाएगा। 7-8 गुना लगेगा लेकिन फिर भी इसमें मैल बैठ जाएगा, वो दूर होगा नहीं। ऐसे रुपयों का मैल बैठा वो दूर नहीं होगा। सब खुशी दान पुण्य कर दो तो इस बात को जानते नहीं, इधर ख्याल नहीं है, वृत्ति जाती नहीं है। इतना खर्च कर दिया सा, इतना कर दिया, क्या शक्ति कितनी है, कितना कर सकता है, कितना किया, ये बात हमारे अपने में ताकत है उसके अनुसार आप करो। नहीं कर सकते तो अपनी गरीबी है, मामूली पढ़ा लिखा है, समय थोड़ा है, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी भी थोड़ी है। थोड़ी जिम्मेवारी का पालन करना सुगम है, ज्यादा जिम्मेवारी का पालन करना कठिन है। इस बात से जितने थोड़ी संपत्ति है, थोड़ी चीज है, उसमें भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा है, तुम जल्दी अपना उद्धार कर सकते हो। इस वास्ते जिस विधि में भगवान ने हमारे को रखा है, जैसी परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में तुम अपना कल्याण कर सकते हो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए नई परिस्थिति आ जाएगी तब होगा, बिल्कुल गलत है सोलह ना नहीं सोलह। जिस परिस्थिति में आप स्थित हो, इसी परिस्थिति में परमात्मा मिल जाएंगे। परमात्मा परिस्थिति का अधीन नहीं है, परमात्मा योग्यता के अधीन नहीं है, परमात्मा विद्या के अधीन नहीं है, परमात्मा आपकी चतुराई के अधीन नहीं है, परमात्मा समय के अधीन नहीं है, वो तुम्हारे भाव के आई है, भाव को देखते हैं और परवा नहीं। धन से अपने किस पर अधिकार कर सकते हैं, जो लोभी आदमी है उसको धन से अधिकार कर सकते हैं। बल से अधिकार किस पर कर सकते हो, निर्बल है तुम्हारे से, निर्बल है उस पर बल से अधिकार कर सकते हो। योग्यता से अधिकार किस पर होगा, जो अयोग्य होगा उस अयोग्य पर योग्यता से अधिकार होगा। तुम्हारे बलवान अधिक है, धनवान अधिक है, योग्य अधिक है, उस पर किसने अधिकार करोगे। आपके पास जो संपत्ति है, जो आपकी विद्या है, जो बुद्धि है, कला कौशल है, चतुराई है, बुद्धिमानी है, इन बातों से परमात्मा और महात्मा राजी नहीं होते, इनके गुलाम राजी होंगे। धन से धन के गुलाम राजी होंगे तो वे राजी नहीं होंगे, वे राजी होंगे तो वे संत नहीं है, अगर वे राजी होंगे तो संत नहीं है, और संत होगा वो राजी होगा नहीं। तो क्यों नए धन की इच्छा करो, नई परिस्थिति की क्यों इच्छा करो, जरूरत नहीं है। जिस परिस्थिति में रहो, भगवान वहां मौजूद है। बढ़िया से बढ़िया परिस्थिति वाले के लिए भगवान जैसे, वैसे ही घटिया से घटिया परिस्थिति वाले के लिए भगवान वैसे ही वैसे। इस वास्ते अधिकता की इच्छा करना है ये गलती है। इस वास्ते मन कैसे एकाग्र हो, अरे तुम है जैसा मन से भगवान करो, भगवान का नाम लो, पुकारो, हे नाथ क्या करूं, हे प्रभु आप में मेरा मन लग गया है, हे प्रभु मेरा मन लग गया है। जहाँ भक्तों के चरित्रों से, जिन पुस्तकों से भगवान मीठे लगने लगे, वे तुम्हारे उद्धार करने वाली चीज है। चाहे एकाग्रता न हो, चंचलता न मिटे, परवा नहीं। वो चंचलता एकाग्रता मिटेगी तो सिद्धियां और आफत करेगी, कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो सबसे सुगम उपाय है कल्याण का। संसार में अगर कोई सुगम है तो परमात्मा की प्राप्ति ही सुगम है, इसके समान कोई सुगम नहीं है। इस वास्ते मन को बस पकड़ने की जरूरत नहीं है, बल बुद्धि आदि के बस जरूरत नहीं है, परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। जिससे ठीक आपका समाधान होता हो, आपकी आसुर संपत्ति दूर होती हो, देवी संपत्ति आती हो, ऐसों का संग करो, लाभ होगा, जरूर होगा, होगा होगा। अब इसमें संकल्प जो करो, रहने के तो उनका अनुयायी बनने से, कहना मानने से, आज्ञा पालन करने से, उनको पसंद रखने से। गाय भी दूध देती पावस्ती तब आती है, भैंस भी दूध देती राजी और पावस्ती तब देती, वे भी पसंद होते हैं किसी से, उनकी पसंद करो, आज्ञा पालन करो, मन के अनुकूल चलो, जबरदस्ती आ जाएगा। महाराज संत महात्माओं से मैंने सुनी है कि हमारे से बात कोई कंठ पकड़ कहा जो कहा लेगा, कहलाने वाला अगर कंठ पकड़ के करा जो करा लेगा हमारे से, कि बिना रह नहीं जाएगा हमको। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही, जहां आरत अधिकारी मिलेगा, गूढ़ से गूढ़ तत्व को महात्मा छिपाएंगे नहीं। किस वास्ते अपना गूढ़ तत्व तो किस लिए है उनके पास, तो वो छिपेगा नहीं। अनुकूल बनो, अनुकूल बनने से वो अपने स्वभाव को छोड़कर उनके कहने के अनुसार बनो। आज मनुष्य उन संतों को, महात्मा को भी अपने अनुकूल बनाने के उद्योग में है, ये हमारा कहना का है। मैं तो मेरे साथ में रहने वालों के लिए ऐसी बात भी कही है कि देखो भाई, आज्ञा पालन करने से कल्याण हो तो मेरा होना चाहिए, तुम्हारा नहीं। मैं तुम्हारी जितनी बात मानता हूँ तुम उतने नहीं मानते हो। तो आज्ञा पालन मातम मेरे को होना चाहिए, तुम्हारे को होना चाहिए। बोलो
पड़ी
लाभ करती है घर में। हमारे मित्र थे चिन्मयराम जी, आपने देखा होगा ना, तो वे क्या करते कि रामायण सत्य चिंतामणि ऐसी संतों की वाणी जिसमें नाम जी महिमा है, वो बैठ जाते हैं पुस्तक से चाहिए और राम राम करते बस आंसू चलते पुस्तक सब देख लेते, क्यों लिखा देख देख है उसमें वो याद आ जाते हैं। पुस्तकों के पास बीचों बैठे बैठे नाम जप करते देखने मात्र से पुस्तक रहने मात्र से लाभ होता है, उसमें शक्ति है ताकत है लाभ होता है। ये तो हमने देखा केवल देखते हैं विनय पत्रिका देख लिया तो उसमें अच्छे पद है वो याद आ जाते हैं, तत्व चिंतामणि देख लिया तो उसके लिखे हुए पद याद आ जाते हैं, भाव याद आ जाते हैं, बड़ा संग हो जाए बड़ा सत्संग हो जाता है। इसे बड़ी बड़ी पुस्तक ज्ञान करेगी, अरे सिनेमा का गाना और उपन्यास ये गल्प आदि की जो आजकल के है ये पुस्तक बड़ी बड़ी कल्याण में आपको पसंद करेगी, आपको अधोगति मिल जाएगी पड़ी पड़ी, क्यों वही संस्कार उद्बुद्ध होंगे कुसंग है महान। इसको रुचि पूर्व करते हैं आजकल के छोरे, रुचि पूर्व करते हैं वो जितना असर करता है बिना रुचि के सत्संग का असर भी करेगा। भूख बिना भोजन बढ़िया से बढ़िया ताकत दे देगा, बढ़िया से बढ़िया जल है परंतु प्यास बिना क्या गुण करेगा। आपकी प्यास होगी तो पड़े पड़े गुण करेगा। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, उनके दर्शन मात्र से पवित्रता आती है, ये बात है। तो बड़ी बड़ी कल्याण
करता
है निकलन तो भाव से हो है। भावग्राही ना भगवान भाव ही भाव भोगता है, जिससे भाव अच्छा जागृत हो उसी का नाम होगा। और इस तरह से क्या आवाज आई थी
सबसे
बढ़िया क्या कह क्या कह पर सुना नहीं थी
सबसे बढ़िया चीज मिला
मैं क्या करूँ चुप रहना चाहिए पहले क्यों मचा है। अरे बढ़िया चीज मिली तो हल्लो मछली मुझसे आवे, हल्लो मचाओ तो बढ़िया काम मिले, भूखे को भोजन मिल जाए तो क्या करे, अरे भोजन कर रहे हो तो क्या करे तो हल्लो बड़े नारायण 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 सुनाओ।
यह प्रवचन परम श्रद्धी स्वामी जी श्री राम शुक्ला जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तद अनुसार दिनांक 7 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ। राम।